आप सुन रहे हैं टॉल्स्टॉय का अजीम नावल आना करीना, पार्ट वन। पेशकश सैयद इरफान अली। मुफ्त डाउनलोड करें www.server555.com। लियो टॉल्स्टॉय को रूसी जुबान में हम क्या कहेंगे? लियव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय, लियव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय। ये काउंट था, काउंट का मतलब नवाब, अमीर आदमी या जागीरदार। तो ग्राफ, रूसी में काउंट को ग्राफ कहते हैं, इसलिए लियो टॉल्स्टॉय को कहेंगे ग्राफ लियव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय। रूसी जुबान का बुलंद पाया अदीब और आला इंसानी इकदार का तर्जुमान। 28 अगस्त 1828 को इसकी पैदाइश हुई। वॉर एंड पीस और आना करीनीना का शुमार दुनिया के बेहतरीन और तवील तरीन सबसे ज़्यादा सफ़ात वाले नॉवेल्स में होता है, जो कि लियो टॉल्स्टॉय या लियव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय ने लिखे। आना करीनीना 1873 से 1877 के दरमियान किस्तवार यानी सीरियल शक्ल में लिखा गया और ये नावल 5 साल की मेहनत के बाद मुकम्मल हुआ। ऊपर से नावल सादा नजर आता है, मगर अपने अंदर जिंदगी के गहरे फलसफे छुपाए हुए हैं और एक मुद्दत गुजर जाने के बावजूद आदमी माशरे के रिवाज और उनसे मुतसादिम ख्वाहिशात हम इसमें देख सकते हैं। इस नावल में रूस के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अलावा मुख्तसर अरसा के लिए जर्मनी और इटली भी दिखाए गए हैं और दौर है 1870 की दहाई का। अमीर और ऊंचे तबके एरिस्टोक्रेसी का खात्मा हो रहा है, गरीब और निचले तबके की ताकत में इजाफा हो रहा है, सर्स जरी गुलामी का खात्मा हो रहा था और मगरिब के नए रसूम और रिवाज आला तबके में महसूस किए जा रहे थे, जो तमाम नावल में भरपूर तरीके से नजर आते हैं। लियो टॉल्स्टॉय खुद भी अमीर इंसान था और उसने अपने जरई गुलामों में अपनी जमीन तकसीम करने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसे टॉल्स्टॉय की चालाकी करार दे दिया। इस नावल में जा बजा ऐसे किरदार नजर आते हैं जो टॉल्स्टॉय के दिमाग में नक्श थे। एक हमसाया औरत की मोहब्बत में शिकस्त के बाद रेलगाड़ी के नीचे आकर खुदकशी, उसके भाई दिमित्री की बीमारी से मौत और मौत से पहले के हालात और सोचें, और एक साबिका तवाइफ का उसके भाई की तिमारदारी। टॉल्स्टॉय की बहन मारिया का अपने शोहर के दूसरी औरत से ताल्लुकात के बाद उससे अलहदगी अख्तियार करना। 17 साल सोनिया से टॉल्स्टॉय का इश्क, शादी और शादी से पहले उसे अपनी डायरी पढ़ाना और उसकी डायरी पढ़ना। 1863 से लेकर शादी के 25 साल बाद यानी 1888 तक बच्चों की मुसलसल पैदाइश, नेकी बदी, जिंदगी मौत, मजहब और लोगों की नफ्सियात से मुतालिक गहरी सोचें तो टॉल्स्टॉय के हसास दिमाग में पैदाइश से मौत तक उसकी सबसे करीबी साथी रहीं। आना करीनीना एक गैर मामूली जहानत का काम है जिसमें मोहब्बत, बेवफाई और मौत जैसे संजीदा मौजूदात पर भरपूर काम किया गया है। अगर आपने जेन ऑस्टन को पढ़ा है तो ये समझिए कि वो लिखती है कि शादी किस तरह होती है और टॉल्स्टॉय ये बता रहा है कि शादी के बाद क्या होता है या फिर क्या कुछ हो सकता है। आना करीनीना के दो अहम प्लॉट हैं। पहला अहम प्लॉट एक नहायत खूबसूरत शादीशुदा मगर खुदगर्ज औरत की अपने शोहर से बेवफाई और बिलाखिर खुदकशी, और दूसरा प्लॉट कॉन्स्टेंटिन दिमित्रिच लेविन की शादी, देहाती जिंदगी, जिंदगी मौत और मजहब और खुदा से मुतालिक अपने आप से जंग है। लेविन और किटी की जीत जबकि आना और ब्रोंस्की की हार की वजह एक का अपना समाजी जिम्मेदारियों को महसूस करना और दूसरे का उनसे फरार है। आइए नावल के किरदारों पर नजर डालते हैं। मरकजी किरदार है आना, आना अर्कादिवना करीनीना। इसके शोहर का नाम है अलेक्सी अलेक्जेंड्रोविच करेनिन, यानी आना औरत का नाम है और उसके शोहर का नाम है करेनिन। मगर रूसी जुबान में जब आना के साथ उसके शोहर का नाम करेनिन लगेगा तो रूसी जुबान में आ का इजाफा हो जाएगा, यानी आना करीनीना। आना बहन है क्नियाज स्टीपान अर्कादिच अबवोंस्की की। क्या रूसी जुबान के ये नाम मुश्किल लग रहे हैं? तो ये रूसी में सिर्फ एक दफा ये नाम आपको बताऊंगा, आगे नावल की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए मुख्तसिर और आसान नाम जो किरदारों के हैं वो दोहराए जाएंगे। आना के बेटे का नाम है सर्गे अलेक्जेच करेनिन, सरयोजा के नाम से इसे बुलाया जाएगा। आना नावल का सबसे हसीन किरदार, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। नावल का हर किरदार कहीं ना कहीं उसके हुस्न से मुतासिर नजर आ रहा है। ये अपने शोहर से बेवफाई के बाद एक खूबसूरत और अमीर फौजी अफसर के साथ रहना शुरू कर देती है और आखिर में सब लोगों की बेरुखी की वजह से रेलगाड़ी के नीचे आकर खुदकशी करती है। टॉल्स्टॉय ने एक हमसाये औरत को इसी तरह खुदकशी करते देखकर इस नावल के लिखने के बारे में सोचा। कुछ लोगों का ख्याल है कि आना को जिंदगी में पहली मरतबा मोहब्बत अपने महबूब ग्राफ एलेक्जे क्रियोविच व्रोंस्की यानी व्रोंस्की से मिली, और वो पीछे हटने की बहुत ख्वाहिश के बावजूद भी अपने शोहर और बेटे को छोड़कर व्रोंस्की के साथ रहने लगी, मगर हकीकत में उसे खुदगर्ज और बेवफा औरत दिखाया गया है। करेनिन यानी आना का शोहर उससे उम्र में काफी बड़ा है, बेहद दौलतमंद और बहुत ही आला सरकारी ओहदे पर फाइज। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मोहब्बत से खाली और किसी की परवाह ना करने वाला इंसान है, मगर दूसरों का ख्याल है कि बहुत आला ओहदे की वजह से वो एक खास रिजर्व जिंदगी गुजारने का आदी है। आना का ख्याल है कि उसे कभी तवज्जो और मोहब्बत इस इंसान यानी अपने शोहर से नहीं मिली, और वरुंस्की ने जब उससे जारी मोहब्बत किया तो अपना शोहर उसे बदसूरत और नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगा। वरोंस्की को इस नावल का विलेन कहा जा सकता है, बेहद अमीर खूबसूरत और नौजवान फौजी अफसर, दुनिया के तौर तरीकों से वाकिफ, सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद जहीन तरीन और खूबसूरत नौजवानों में इसका शुमार होता है। इसको आला तबका से ताल्लुकात बनाने का फन आता था। किटी से मोहब्बत करते करते जब आना जैसी मुकम्मल औरत उसे नजर आई तो उसने उसे हासिल करने का मुकम्मल इरादा कर लिया। उसे हासिल भी किया और काफी अरसा उसके साथ बगैर शादी के जिंदगी बसर की। उसकी आना से औलाद भी हुई, मगर मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से जब आना ने महसूस किया कि अब वो उसका नहीं रहा तो उसने खुदकशी कर ली। व्रोंस्की की माँ एक बड़ी उम्र की फैशनेबल खातून है जो आना के साथ कुछ देर रेल में सफर करती है। लेविन नॉवल का एक अहम और मुस्बत किरदार है। टॉल्स्टॉय ने लेविन के किरदार में अपने आप को, अपनी सोचों और ख्वाहिशात को पेश किया है। आना मोहब्बत की तलाश में है और लेविन अपनी शिनाख्त सख्त मेहनत और रूहानियत में तलाश कर रहा है। वो जिंदगी और मौत के बारे में सोच रहा है, लोगों के साथ भलाई करना चाहता है। आना के भाई स्टीवा उसका बचपन का दोस्त है। इन दोनों की सोच में बेहद फर्क है, मगर ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। स्टीवा मुख्तलिफ औरतों को जिस्मानी सुकून के लिए पसंद करता है, मगर लेविन सिर्फ एक औरत को बीवी के रूप में और घरेलू सुकून के लिए हासिल करना चाहता है। वो देहात में रहने वाला सेहतमंद, मुखलिस, ईमानदार और मेहनती नौजवान है। किटी से शादी का ख्वाहिशमंद, लेकिन वो व्रोंस्की से शादी की ख्वाहिश की वजह से इनकार कर देती है, मगर बाद में व्रोंस्की के ठुकराने के बाद लेविन उसे अपनी बीवी बनाता है। सर्गी लेविन का सोतेला भाई है जो पढ़ा लिखा इंसान है और लेविन का हमदर्द भी, और निकोलाई लेविन का सगा भाई है जो मुस्तकिल बीमार है। स्टीवा भाई है आना का, और आना की तरह ही सेहतमंद और खूबसूरत, एक सरकारी अफसर, बहुत अमीर मगर अपने अखराजात के मुकाबले में गरीब। टॉल्स्टॉय ने इसके किरदार में दिखाया है कि मुनाफिक अपने आप में मगन, बेवफा, अपनी बीवी से बेपरवाह और बच्चों से बेखबर और मतलबी इंसान किस तरह के होते हैं। उसकी बीवी डॉली उस पर जान निसार करती है, मगर ये उसको मुसलसल नजरअंदाज करता है और अपनी जिम्मेदारियों से फरार चाहता है। आना का बेटा है सरयोजा। आना इससे बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर अपनी मोहब्बत व्रोंस्की के लिए बच्चे और शोहर को छोड़ चुकी है, और बाद में बेहद परेशान है कि अगर उसका शोहर उसे तलाक दे भी देगा तो बच्चा तो अपने पास ही रखेगा, क्योंकि बाप बच्चे को देने को तैयार नहीं है। उस दौर में तलाक देना भी बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था। प्रिंस शिरबास की बाप है स्टीवा की बीवी डॉली और लेविन की मोहब्बत किटी का। अपनी बीवी के बरक्स वो सच्चा और सादा तबीयत का मालिक है, क्योंकि उसकी बीवी की ख्वाहिश थी कि किटी की शादी बहुत तेज़ और अमीर ब्रॉस्की से हो, जबकि बाप की ख्वाहिश थी कि शरीफ ख़ानदानी और ज़मींदार घराने का फ़र्द लेविन उसकी बेटी के लिए बेहतर है। उसकी बेटी डॉली स्टीवा की बीवी है, मगर इस वक्त बहुत सी औलाद, बहुत से बच्चों की वजह से वो अपनी खूबसूरती खो चुकी है। अपने शोहर से बेहद मुखलिस, मगर उसका शोहर उसे नज़रअंदाज करता है। 18 साल किटी बहुत खूबसूरत लड़की जिसे लेविन ने बहुत मोहब्बत की, मगर किटी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वरोंस्की उसमें दिलचस्पी ले रहा है। मगर वरोंस्की ने उसे छोड़कर आना को अपनाने का फैसला किया और किटी बेहद बीमार हो गई और लेविन ने उससे शादी की। किटी के किरदार में टॉलस्टॉय की बीवी सोनिया की झलक नज़र आती है। टॉलस्टॉय की ज़िंदगी के इब्तदाई साल भी लेविन और किटी की शादी के इब्तदाई सालों की तरह बहुत खुशगवार थे। निकोलाई लेविन का भाई है। लेविन उसे बीमारी से कमज़ोर होता हुआ और मरते हुए देखता है और मौत के बारे में सोच नावल का अहम हिस्सा है। आइए आना करेनिना शुरू करते हैं। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। स्टीवा की बीवी डॉली को इल्म हो चुका था कि उसका शोहर बच्चों की देखभाल करने वाली फ्रांसीसी लड़की से इश्क कर रहा है, और यही वजह थी कि घर के हालात बहुत खराब थे। स्टीवा बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त इंसान था, जबकि उसकी बीवी 7 बच्चों की माँ थी, जिनमें से 5 जिंदा थे और 2 मर चुके थे। वो अपने शोहर से सिर्फ 1 साल कम उम्र होने के बावजूद अपनी खूबसूरती खो चुकी थी। 3 दिन पहले उसके हाथ एक खत लगा और तमाम हालात का इल्म होने के बाद उसने गुस्से में शोहर से बातचीत खत्म कर दी और घर के हालात बेहद अबतर थे। स्टीवा का ख्याल था कि उसकी बीवी, जो कि अब हुस्न खो बैठी है, को उसके इश्क का इल्म था और अब तक जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज कर रही है, मगर इस कदर शदीद रद्द अमल से वो घबरा गया था क्योंकि उसकी बीवी तो अपने काम से काम रखने वाली एक घरेलू औरत थी। उसके मुलाजिम का ख्याल था कि हालात जल्द दुरुस्त हो जाएंगे और नर्स ने भी मशवरा दिया कि बीवी की हालत सख्त ख़राब है और स्टीवा को अपनी बीवी से माफ़ी मांगनी चाहिए और हालात को दुरुस्ती की तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। दफ्तर जाने के लिए उसने अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार किया। भरपूर नाश्ते के दौरान वो खत पढ़ा जिसमें ज़मीन खरीदने की ख्वाहिश थी, मगर चूंकि उसकी बीवी डॉली ज़मीन की मालिक थी लिहाजा उससे सुलह के बगैर ये मुमकिन ना था। स्टीवा ने दफ्तर की डाक पर नज़र डाली, आज़ाद ख्याल अखबार पढ़ा, सिगार पिया। वो खुश था, मगर बीवी की नाराज़गी के ख्याल ने उसे संजीदा कर दिया। उसने अपनी बड़ी लड़की को प्यार किया और माँ के बारे में पूछा और इल्म हुआ कि वो सख्त नाराज़ है और रात को जागती रही। इस दौरान छोटा बेटा, जिसे इल्म था कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ उसकी बहन से की जाती है, वो संजीदा खड़ा रहा। स्टीवा को इल्म था कि ना तो वो अपनी खूबसूरती और सेहत ख़त्म कर सकता है और ना ही शादी के 9 साल बाद उसकी बीवी का हुस्न लौट सकता है, तो हालात कैसे तब्दील हो सकते हैं। उसने अपनी बीवी से मिलने का फ़ैसला किया। उसकी बीवी डॉली ने अपने शोहर को देखकर गुस्से के असरात अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की और दोबारा अलमारी से कपड़े तलाश करने लगी। गुज़िश्ता 3 रोज़ से वो बार बार ऐसा ही कर रही थी। एक तरफ उसका शोहर था जिसे वो बेहद मोहब्बत करती थी और दूसरी तरफ उसके घर की मुलाजमा से नाजायज ताल्लुकात। शोहर को करीब देखकर उससे नफरत से उसकी तरफ देखा। अगरचे वो माफी मांगने आया था, मगर उसकी अच्छी सेहत की वजह से और मुतमईन चेहरे को देखकर उसकी बीवी और गुस्से में आ गई। शोहर ने हर तरह से उससे माफी मांगी, मगर वो किसी तरह माफ करने के लिए तैयार ना थी और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बाहर चली गई। स्टीवा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि बीवी की बुलंद आवाज सब मुलाजमीन ने सुनी होगी। उसने दफ्तर जाने से पहले नौकर को हिदायत की कि उसकी बहन आना, जो कि दूर से आ रही है, उसके लिए कमरा तैयार किया जाए, जबकि उसकी बीवी डॉली सोच रही थी क्या वो अपने शोहर के साथ अब ऐसे ही रहेगी जैसे इन दोनों में कोई ताल्लुकात ना हो। क्या उन दोनों में अब भी मोहब्बत है? www.server555.com